आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश किताब की एक बहुत ही खूबसूरत पोयम जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो हर रोज की तरह हम क्या करेंगे, हम पहले पूरी की पूरी पोयम पढ़ेंगे। वी विल लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स इनसाइड इट, डिफिकल्ट जो वर्ड्स है वो पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको समरी बताऊंगी ओवरऑल पोयम की। उसके बाद हम स्टेंजा बाय स्टेंजा मतलब कि हर पैराग्राफ का मतलब समझेंगे और उसके बाद नीचे जो कुछ इजी क्वेश्चन दिए हैं उसके हम जवाब ढूंढेंगे। ओके, बहुत ही इजी सवाल है, तो शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी पोयम का नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। सो दिस पोयम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. They tell them a curious story, I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know, he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth and being faint with fasting, for the days was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first one done. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer. But she couldn't part with that, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such woman was enough to provoke a saint. And he said, you are too far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो बच्चों, ये पोयम लिखी गई है फॉबी कैरी ने। तो बच्चों, अभी मैं आपको ब्रीफली इस कविता का मतलब समझाती हूँ कि क्या क्रक्स है, क्या बताना चाहते हैं हमारे पोएट हमें। तो बच्चों, बात ये है कि पोएट इस कविता के थ्रू हमें ये बताना चाहती है कि ग्रीड यानी कि किसी भी चीज की लालसा करना बहुत ही बुरी चीज है, और अगर हम किसी भी चीज की इस कदर जब हम लालसा करते हैं तब हमारा जीवन जो है, हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही मतलब उस वुड पेकर यानी कि जो बर्ड होता है ना, जो कि अपना खाना वुड में ढूंढता है यानी लकड़ियों में ढूंढता है, उसकी तरह होती है हमारी लालसा, हमारी ग्रीड कभी खत्म नहीं होती। एंड वी एंड अप बीइंग सर्चिंग फॉर ऑल दोस थिंग्स, और हम लोग खुश रहने के बजाय हमारी इस पूरी जिंदगी दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारी चीजें हमारे सामने है उन पे फोकस करे ना करे बिना हम लोग बाकी चीजों पे फोकस करते हैं, बाकी चीजों की लालसा करते हैं। और इस बार्गेन में क्या होता है, जो हमारी मेन चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो हम लोग भूल जाते हैं या फिर उनकी वैल्यू करना हम लोग नजरअंदाज कर लेते हैं। ओके, तो यही इस पोयम में हमें हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि जब भी हम किसी चीज की बहुत ज्यादा हद से ज्यादा जब लालसा करते हैं तब हमारा जीवन उतना ही दुखी होता है जितना कि एक वुडपेकर का होता है जो कि अपना खाना जो है वो हमेशा से ढूंढते रहता है किसी लकड़ियों में। ओके, तो शुरू करते हैं हम स्टेंजा वे स्टेंजा मतलब समझने में। तो बेसिकली बच्चों ये जो पोयम है ना, तो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इट इज अ पोयम विच नरेट्स द स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा, मतलब छोटे छोटे स्टेंजा में हमें ये पोयम जो है कहानी इसकी नरेट की गई है। ओके, कहानी है वो बताई गई है नॉर्थ पोल की, यानी कि हमारे पूरे अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है उसके दो पोल्स माने जाते हैं, यानी कि दो एंड जिसके माने जाते हैं। एक है नॉर्थ पोल जो कि एक्सट्रीम उत्तर दिशा में होता है, और दूसरा है साउथ पोल जो कि एक्सट्रीम साउथ में यानी कि दक्षिण दिशा में होता है। तो ये जो पोयम है ये नॉर्थ पोल वाली पोयम है, मतलब उत्तरी हिस्से की पोयम है जहाँ पे बहुत ठंड का मौसम होता है। ओके, और तो और ये जो वर्ड जो है ना बच्चों, लेजेंड, तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही दिव्य हो, अपने आप में कैरेक्टर में उसका बहुत एक दिव्य कैरेक्टर हो और पूर्वों के मतलब बहुत ही ओल्ड जमाने का हो वो। ओके, सो द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड यानी कि एक ऐसे इंसान की एक ऐसी कहानी जो कि नॉर्थलैंड में रहता हो, यानी कि टॉप मोस्ट जो उत्तरी जो दिशा है, उत्तर दिशा है हमारे अर्थ की, वहां पे रहता होगा। ओके, सो स्टेंजा वन हम पहले पढ़ लेते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, यानी कि इन द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल, जिसको कहते हैं हम नॉर्थलैंड कहा गया है इस पोएम में, द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज वेरी लेस बिकॉज इट्स पोजिशन इज सच दैट द सन्स रेज रीच फॉर अ वेरी लेस टाइम, यानी कि जो नॉर्थ लैंड जो है, यानी कि नॉर्थ पोल, वहां पे जो है दिन का जो टाइम होता है ना बच्चों की, जैसे कि यहाँ पे उजाला कब हो जाता है, सुबह 6 बजे अप्रोक्सीमेट, और रात को अंधेरा होता है करीब 7 बजे के टाइम, है ना, हमारे यहाँ पे। तो नॉर्थलैंड जो एरिया है वहां पे बहुत ही कम वक्त में दिन का वक्त होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे रात ही होती है, यानी कि आप अगर देखो मान के चलो आप वहां पे 5 या फिर 4 बजे शाम, यहाँ के जब दोपहर के 4 बजते हैं तो वहां पे ऑलमोस्ट वहां पे रात हो जाती है। ओके, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्ट टाइम बट वेरी हो जाता है ये टाइम, बट ऑल ऑफ आप ऐसे अंदाजा लगाने में आप समझ सकते हो। ओके, तो दिन का वक्त वहां पे बहुत कम होता है क्योंकि सूरज की किरणें वहां पे जल्दी नहीं पहुंचती। ओके, या फिर बहुत कम वक्त के लिए पहुंचती है। ओके, सो व्हेन दिस एरिया इज एक्सपीरियंसिंग विंटर सीजन द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग, और ये कब होता है, जब विंटर सीजन होता है यानी कि ठंड का मौसम जब होता है ना बच्चों, तब ऐसी सिचुएशन आती है। ओके, तो व्हेन दिस एरिया इज एक्सपीरियंसिंग विंटर सीजन द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग एंड द डे टाइम आवर्स आर वेरी लेस। इन द लाइन फोर, यहाँ पे जो स्टेंजा जो है फोर्थ लाइन की जो है, वहां पे दे जो वर्ड लिखा है ना TH EY, इसका मतलब है लोग, जहाँ पे मतलब जो लोग जो इस एरिया में रहते हैं इस नॉर्थ पोल में वो। सो द पोएट सेज दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट टाइम इज सो लॉन्ग दैट द पीपल कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, मतलब कि लोग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको बहुत ज्यादा वक्त के लिए सोना भी उनके लिए उतना पॉसिबल नहीं होता। ओके, सो इफ दे गो टू बेड टेक फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप एंड देन दे वेक अप एंड इट इज स्टिल अ नाइट टाइम, मतलब कि वो लोग सोने जाते हैं पर फिर भी मतलब थोड़ी देर सोते हैं, थोड़ी देर सोने के बाद जब वो उठते हैं तब भी वहां पे अगर वो बाहर देखते हैं तब भी नाइट ही टाइम होता है। ओके, सो ही वॉन्ट्स टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग, मतलब इन सारी लाइन्स में वो ये बताना चाहती हैं कि वहां पे नाइट टाइम जो है वो बहुत ज्यादा वक्त के लिए होता है। ओके, नाउ स्टेंजा टू, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन द फनी फरी क्लोथ्स। यहाँ पे स्लेजेस का जो वर्ड है, स्लेजेस SLEDGES का मतलब है अ व्हीकल ऑन रनर्स फॉर कन्वेइंग लोड्स ऑफ पैसेंजर्स ओवर द स्नो और आइस ऑफन पुल्ड बाय ड्रॉट एनिमल्स। ओके, तो हार्नेस का मतलब है इट मीन्स टू टाई द रेनडियर्स विद अ रोप टू अ स्लेज सो इट कैन नॉट सो इट कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि रेनडियर आप कह सकते हो सेंटा क्लॉज होता है ना, उसका जो रथ होता है उसके सामने जो जो डियर्स होते हैं, इनकी जो हिरन होते हैं उनको रेनडियर कहा जाता है जो कि बस नॉर्थ पोल में मिलते हैं। ओके, वो स्पेशल तरह के हिरन होते हैं। इनफैक्ट स्विफ्ट यहाँ पे SWIFT का मतलब है समथिंग विच रन्स वेरी फास्ट। सो द नॉर्थलैंड रीजन एक्सपीरियंसेस सीवियर कोल्ड कंडीशंस, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशंस होती है. इट इज अ स्नोवी एरिया एंड द रेनडियर इज एन एनिमल विच इज फाउंड इन दिस पोलर रीजन. जैसे कि मैंने आपको कहा था, रेनडियर जो है एनिमल, वो बस पोलर रीजन में ही पाया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है. सो पीपल टाई इज अः सो पीपल टाई द रेनडियर्स टू स्लेजेस एंड देन द रेनडियर्स पुल द स्लेजेस, यानी कि वो ऐसे रथों को बांधते हैं रेनडियर्स को, और वो रेनडियर फिर वो रथ जो है या फिर जो गाड़ी जो है वो पुल करते हैं. यहाँ पे जैसे कि हम लोग बुलॉक कार्ट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम बफेलो, या फिर बफेलो को तो खैर नहीं बांधते, जैसे कि हम ऑक्स जो होते हैं यानी कि बैल जो होते हैं उनको हम कार्ट में ऐसे बांधते हैं, या फिर जो गधे होते हैं उनको भी करते हैं ना. तो उसी तरह पे वहां पे नॉर्थ पोल में रेनडियर्स को बांधते हैं. ही एड्स दैट द चिल्ड्रन लुक लाइक यंग वंस ऑफ बेयर बिकॉज दे वेयर फनी लुकिंग क्लोथ्स विच इज लाइक द फरी स्किन ऑफ अ बेयर. यानी कि पोएट हमें यहाँ पे एक मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो एकदम भालू की तरह दिखते हैं. क्यों? क्योंकि वो वैसे कपड़े पहनते हैं जिन पे बहुत ज्यादा फर हो, यानी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, और ठंड के मौसम में आप जैसे स्वेटर्स यूज करते हैं ना, उसी तरह के स्वेटर्स वहां पे बच्चे यूज करते हैं, और वो भालू की तरह दिखते हैं. मतलब पोएट जो है यहाँ पे थोड़ा सा फनी अंदाज लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आते हैं स्टैंजा नंबर 3 पे. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. यहाँ पे जो वर्ड है क्यूरियस, इसका मतलब है स्ट्रेंज या फिर बहुत ही दिलचस्प स्टोरी. सो दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. यानी कि पोएट यहाँ पे जो वर्ड है दे का मतलब है यहाँ पे पेरेंट्स एंड एल्डर्स, यानी कि जो बड़े हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो, ठीक है, टू द चिल्ड्रन और द यंगर जनरेशन को वो कहानियां सुनाते हैं. सो द एल्डर्स ऑफ नॉर्थलैंड रीजन टेल अ स्टोरी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द यंगर जनरेशन. द पोएट सेज दैट ही डजंट थिंक दैट द स्टोरी इज ट्रू, बट इफ ही टेल्स द स्टोरी टू द रीडर, इट मे बी द रीडर कुड लर्न अ लेसन फ्रॉम इट. सो द स्टोरी गिव्स हियर द इम्पोर्टेंट मैसेज. यानी कि राइटर पोएट हमारे कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताऊंगा, मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता, पर शायद ऐसा हो सकता है कि आप इससे कुछ तो लेसन सीख जाओगे अगर ये कहानी मैं आपको बताऊं तो. तो स्टैंजा 4 जो है वहां से हमारी एक्चुअल कहानी शुरू होती है. सो वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. तो सेंट पीटर इज एन ये मतलब यहाँ के सेंट पीटर जो यहाँ पे रेफरेंस दिया गया हुआ है, उनको कहा जाता है कि वो जो यीशु क्राइस्ट थे, यानी कि जीसस क्राइस्ट, उनके डिसाइपल थे, यानी कि उनके शिष्य थे या फिर उनके फॉलोअर थे, और वो बहुत बड़े संत उनको कहा जाता है. सेंट यानी कि संत. प्रीचिंग का मतलब है टू गिव रिलीजियस टॉक्स, यानी कि आप देख सकते हो कि जब भी आप मंदिरों में जाते हो तो वहां जो पंडित लोग जो होते हैं वो कुछ चीजें आपको हमें बताते हैं, तो उसको प्रीचिंग कहा जाता है. यानी कि ब्राह्मण लोग जो बताते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनको प्रीचिंग कहा जाता है. मतलब भगवान के बारे में बताना या फिर अपने धर्म के बारे में बताना. सो द स्टोरी इज अबाउट सेंट पीटर व्हेन सेंट पीटर यूज्ड टू लिव इन द वर्ल्ड एंड वेंट अराउंड गिविंग रिलीजियस लेक्चर्स टू द पीपल जस्ट लाइक ऑल सेंट्स डू. देन एन इंसिडेंट हैपन, यानी कि सेंट पीटर जो है वो एक वक्त पे अपने लोग पूरे दुनिया को अपने रिलीजन के बारे में बताने जा रहे थे, और ये कहानी तब की है. जब ये इंसिडेंट हुआ तब की कहानी है ये. आते हैं स्टैंजा नंबर 5 पे. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज एंड ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. हर्थ का मतलब है यहाँ पे फायर प्लेस वेर यू डू द कुकिंग. यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्रेड वगैरह जहां से मिलते हैं ना, तो वो जो है वहां पे हर्थ से मतलब पकाते हैं. मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका चूल्हा होता है ना, चूल्हा तो खैर छोटा होता है आपके घर में बहुत ज्यादा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऐसे कमर्शियल एरियाज जो होते हैं यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में ऐसे ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं ना बच्चों, तो वहां पे एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है चूल्हे जैसा ही. वहां पे नीचे आप बहुत ज्यादा लकड़ियां डाल सकते हो, बहुत ज्यादा फ्यूल आप नीचे डाल सकते हो, और एक बहुत बड़ी आग फिर वहां पे जल जाती है, और उस आग में बच्चों वहां पे बहुत सारे ब्रेड जो होते हैं या फिर जो भी कुछ खाना होता है वो वहां पे बन जाता है, तो उस प्लेस को कहते हैं हर्थ, यानी कि HEARTH। सो इट्स अ फायर प्लेस वेर यू डू कुकिंग। ओके, तो व्हेन सेंट पीटर वॉज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड गिविंग रिलीजियस लेक्चर्स टू पीपल, ही रीच द डोर ऑफ अ कॉटेज वेर अ स्मॉल वुमन वॉज मेकिंग केक्स। शी वॉज बेकिंग द केक्स इन द फायर प्लेस। मतलब क्या होता है, सेंट पीटर ऐसे घूमते घूमते बहुत ज्यादा थक जाते हैं और एक जगह पे आते हैं, एक कॉटेज पे, यानी कि एक बहुत ही छोटा सा घर होता है, वहां पे वो आते हैं। और वहां पे वो क्या देखते हैं कि एक औरत है, वो अपने घर में, अपने प्लेस में, एक बहुत ही मामूली सी औरत केक बना रही है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। एंड बींग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। फेंट यानी कि यहाँ पे जो वर्ड है वहां का मतलब है वीक, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर होना। सो एज सेंट पीटर हैड नॉट ईटन एनीथिंग द एंटायर डे, ही वॉज वेरी हंग्री एंड वॉज फीलिंग वेरी वीक। सो ही वेंट टू दिस वुमन हु वॉज बेकिंग केक्स एंड ही आस्क फॉर द केक आउट ऑफ वन केक आउट ऑफ मेनी एंड दैट शी हैड बेक। मतलब क्या होता है कि ये जो महिला होती है, ये औरत, वो बहुत ज्यादा केक उसने बनाए होते हैं, और क्योंकि सेंट पीटर पूरे दिन में भूखे होते हैं, उनके पास मतलब और कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो उस महिला को क्या कहते हैं कि क्या आप मुझे एक, आपने इतने सारे केक्स बनाए हैं तो क्या आप मुझे एक केक दे सकती हैं। तो होता क्या है, देखते हैं आगे। स्टेंजा नंबर 7 पे आते हैं, पैरा 7। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। मतलब होता क्या है, वो महिला क्या करती है, उसने बहुत सारे केक्स तो ऑलरेडी बनाए होते हैं, है ना, पर वो क्या करती है, उन केक्स में से कोई भी केक उसको देना पसंद नहीं आता, तो वो क्या करती है, एक नया वाला केक वो बनाने की कोशिश करती है। पर इस बार वो क्या करती है, बहुत ही छोटा सा केक बनाने की वो कोशिश करती है। एंड और तो और क्या होता है कि फिर जब वो केक बन रहा होता है तो उसको क्या लगता है कि अरे केक बहुत ज्यादा बड़ा है। सो द वुमन वॉज बेसिकली सेल्फिश, मतलब वो खुदगर्ज थी, वो बस अपने बारे में सोचती होती है। और शी डिड नॉट गिव केक फ्रॉम हर स्टोर, मतलब वो अपने जो बनाए होते हैं उसमें से, स्टोर में से केक देना पसंद नहीं करती, तो वो दूसरा वाला केक, छोटा वाला बनाने के लिए लग जाती है। बनाते बनाते उसको ये लगता है कि अरे ये तो केक बहुत बड़ा बन जाएगा देने के लिए, तो ये मैं कैसे दे सकती हूँ। ओके, तो देखते क्या होता है आगे। देयरफोर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। नीडेड का मतलब है टू मेक डव फ्रॉम द फ्लोर या फ्रॉम द फ्लोर, मतलब कि आप जब अपने घर में जाके देखोगे, जब आपकी माँ आपके लिए रोटी बनाई रही होती है ना, और जब वो आटा गूंथती है तो उसको कहते हैं डव। तो आटा, गुना हुआ आटा को, आटे को कहते हैं हम डव, यानी कि DOUGH। नीडेड की नीडेड का मतलब है आटा गूंदना। ओके, मतलब आप पानी डाल के जैसे आटे को आप ऐसे एक सॉफ्ट सा बनाते हो ना, तो उसको गूंदना कहते हैं, या फिर नीडेड। ओके, नीड कहते हैं उसको, KNEADED। ओके, नीडेड यानी कि आटा गूंदना। सो द लिटिल मिसर वुमन थॉट दैट द केक वॉज टू बिग टू गिव अवे, सो शी स्टार्टेड मेकिंग अनदर स्मॉलर केक। व्हेन शी लुक्ड एट द केक शी अगेन फेल्ट इट वॉज एज बिग एज द प्रीवियस वन। अगेन शी वॉज नॉट रेडी टू गिव द स्मॉलर केक टू सेंट पीटर। मतलब उसको लगता है कि हर बार जब वो केक को देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो केक बहुत बड़ा है, ये मैं कैसे दे दूं। वो फिर से एक केक बनाने में लगती है, फिर उसको लगता है कि अरे ये केक और, मतलब जो लास्ट टाइम जैसे केक बना था उसके ही जैसा बना है, तो ऐसे वो करती रहती है। तो आखिरकार को क्या होता है, शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव, मतलब कि वो बहुत छोटा हिस्सा जो आटे का होती है वो लेती है, एंड शी रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट, मतलब कि वो बहुत ज्यादा उसको मतलब थिक नहीं बनाती, बहुत ज्यादा थिन बनाती है उसको। एंड बेक्ड इट एज थिन एज द वेफर, मतलब कि आपके यहाँ पे जैसे चिप्स होते हैं ना, आप जब भी मतलब आप शॉप से लेके खरीद के खाते हो, उस तरह का, मतलब उस लेवल का वो केक बनाती है। बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट टू, मतलब उसको ऐसे लगता है कि वो भी उसको देने की इच्छा नहीं होती। सो थर्ड टाइम, स्क्रैप का मतलब है बच्चों स्मॉल अमाउंट। ओके, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव, जो है वर्ड यहाँ पे स्क्रैप का मतलब है स्मॉल अमाउंट। ओके, सो द थर्ड टाइम शी टुक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डव एंड रोल्ड इट। द पोएट सेज दैट शी रोल्ड एंड रोल्ड टू ले एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट शी रोल्ड द डव एंड मेक इट वेरी थिन लाइक वेफर एंड बेक्ड इट, बट शी वॉज सो ग्रीडी शी कुडंट गिव दैट थिन पीस ऑफ ब्रेड टू द सेंट, यानी कि उसको तब भी उस औरत को ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा वाला केक बना दिया, ये मैं कैसे दे सकती हूँ। ओके, आते हैं हमारे स्टेंजा नंबर 10 पे। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। सो वुमन हियर इज द रीजन दैट व्हेन शी सो द वुमन रीजन दैट व्हेन शी एट द केक्स शी फेल्ट दैट दे वर वेरी स्मॉल बट इफ शी हैड टू गिव देम टू समवन शी फेल्ट दे आर टू बिग टू बी गिवन अवे। शी पुट ऑल ऑफ द केक्स ऑन द शेल्फ ऑफ अ किचन सो शी डू नॉट हैव टू गिव द केक टू द सेंट पीटर। मतलब उसको ऐसा लगता है उस औरत को, वाले केक तो मैं खा लूंगी, क्यों? क्योंकि मतलब खाने में तो ये केक बहुत ज्यादा छोटे हैं, मतलब देने के लिए तो ये जो केक्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो वो क्या करती है, अपनी किचन के शेल्फ में ये सारे केक रखती है, वो सेंट पीटर को एक भी उनमें से केक नहीं देती। तो आते हैं स्टैंजा नंबर 11 पे। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज एंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच वुमन वॉज इनाफ टू प्रोवोक अ सेंट। यहाँ पे प्रोवोक का मतलब है कॉज टू गेट एंग्री, मतलब किसी को भड़काने में उसको बहुत ज्यादा, मतलब आप कोई रीजन देते हो कि वो इंसान बहुत ज्यादा भड़क जाए या फिर बहुत ज्यादा एंग्री हो जाए। सो सेंट पीटर बिकेम एंग्री, ही वॉज वेरी हंग्री, ही वॉज फीलिंग वेरी वीक एंड द सेल्फिश वुमन वॉज नॉट रेडी टू गिव हिम इवन अ स्मॉल केक। द बिहेवियर ऑफ द ग्रीडी वुमन एंगर्ड सेंट। यानी कि हमें यहाँ पे ये समझाया जा रहा है, बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस औरत का बार बार इस तरह की चीज, इस तरीके से जो उनकी हरकतें होती हैं वो देखकर सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये वुमन बहुत ज्यादा, ये औरत जो है सेल्फिश है। ओके, तो उनका ये वाला बिहेवियर सेंट पीटर को बहुत गुस्सा देता है। आते हैं स्टैंजा नंबर 12 पे। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वॉर्म। यहाँ पे ड्वेल का मतलब है रहना या फिर टू लिव। सो सेंट पीटर कर्स्ड द वुमन एंड सेड दैट शी वाज वेरी सेल्फिश, शी डिड नॉट डिजर्व टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ही एडेड दैट गॉड हैड गिवन हर फूड शेल्टर फायर टू कीप हर वॉर्म बट शी हैड बिकम सेल्फिश फॉर ऑल द रिसोर्सेस शी हैड, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव शेयर ऑफ देम टू एनीबडी। मतलब कि यहाँ पे सेंट पीटर कहते हैं हमें कि ये जो औरत है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, तो उसी वजह से सेंट पीटर उसको शाप देते हैं कि तुम जो औरत हो वो तुम्हें इतनी ज्यादा, मतलब अपनी लाइफ में फैसिलिटीज मिली हैं, ठंड के मौसम में रहने के लिए घर है तुम्हारे पास, खुद को वॉर्म रखने के लिए तुम्हारे घर में मतलब जो फायर है आग भी जल रही है, तुम्हारे पास खाना भी है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अपने आप का जो सेल्फिश नेचर है उससे तुम परे नहीं हट रहे हो, है ना? तो सेंट पीटर क्या कहते हैं कि तुम ये सारी चीजें बिल्कुल भी अपनी लाइफ में डिजर्व नहीं करती। आते हैं स्टैंजा नंबर 13 पे। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड्स टू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। यहाँ पे स्कैंटी जो वर्ड है उसका मतलब है वेरी लिटिल या फिर बहुत छोटा, और बोरिंग का मतलब है मेक होल इन समथिंग विद अ टूल और बाय डिगिंग, यानी कि किसी भी चीज में छेद करना। ओके, सो सेंट पीटर कर्स द वुमन दैट हेंस शी वुड बिकम अ बर्ड बिकॉज शी डिड नॉट डिजर्व द ह्यूमन फॉर्म, शी शैल बिकम अ बर्ड एंड जस्ट लाइक बर्ड्स बिल्ड देयर हाउसेस बाय बोरिंग इनटू द वुड एंड कलेक्ट वेरी लिटिल फूड बाय वर्किंग हार्ड द एंटायर डे, सिमिलरली शी वुड ऑल्सो वर्क हार्ड इन द ड्राई वुड ऑल डे एंड गेट लिटिल फूड एंड मेक अ स्मॉल प्लेस फॉर हर सेल्फ टू लिव इन। आगे जाके सेंट पीटर उस महिला को कहते हैं कि क्योंकि तुम एक इंसान की जिंदगी जो है नसीब, मतलब तुम्हें एंजॉय करने में तुम्हारी उतनी काबिलियत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शाप दे देता हूँ कि तुम जो है अपनी जिंदगी एक चिड़िया की, यानी कि एक पक्षी की तरह रहोगी। जैसे कि पक्षी अपने खाना, अपना खाना ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, अपना घर बनाने में भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। आपने बच्चों देखा होगा चिड़िया के घोंसले आपने देखे होंगे या फिर बहुत सारे बर्ड्स के आपने घोंसले देखे होंगे, कितना हार्डवर्क, कितना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके वो अपने घोंसले अपने लिए बिल्ड करते हैं। तो सेंट पीटर कहते हैं कि भगवान ने तुम्हारे लिए तो इतनी सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से दे ली थी, पर तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई हो, तुम्हें उन सारी चीजों का महत्व नहीं पता। तुम अपने आप में जो चीजें होती है उसको बस अपने आप में सिमट के रखती हो, किसी के साथ शेयर नहीं करती हो। तो इसलिए तुम क्या करोगी अभी, मैं तुम्हें शाप दे देता हूँ कि तुम एक पक्षी बन जाओगी, और जैसे कि पक्षी अपना खाना ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो लोग अपना घर बनाने में स्ट्रगल करते हैं, उसी तरह से तुम भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगी। तो ऐसा सेंट पीटर उसको कहते हैं। देन शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। मतलब कि एज सून एज सेंट पीटर कर्स द वुमेन, शी डिड नॉट गेट अ चांस टू स्पीक फॉर हर सेल्फ, बिकॉज एट दैट मोमेंट शी फ्ल्यू अप टू द रूफ थ्रू द चिमनी एंड फ्ल्यू आउट इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड। सेंट पीटर्स कर्स हैड कन्वर्टेड द वुमन इनटू अ बर्ड। मतलब कि वो औरत क्या करती है, महिला, उसको अपनी साइड रखने का मौका ही नहीं देता, मतलब उसको चांस ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा वो सेल्फिश होती है। ओके, फिर वो क्या करती है, उसके घर में जो चिमनी होती है ना, यानी कि एक एरिया, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहां से धुआं, घर से धुआं बाहर जाने के लिए जो एरिया होता है स्ट्रक्चर, बहुत ही एक पाइपलाइन सी, वो वहां के तरफ जाती है और वो उसके अंदर चली जाती है वो महिला। और क्या होता है, उस महिला वो कन्वर्ट हो जाती है एक वुड पैकर में, यानी कि एक ऐसा बर्ड जो कि अपना खाना जो है वो लकड़ियों में ढूंढता है। आप वुड पैकर को हिंदी में हम कठफोड़वा भी कहते हैं। ओके, कठफोड़वा यानी कि एक ऐसा बर्ड जिसका आपने देखा होगा, जिसका सर रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का, और पूरा उसका शरीर बाकी जो है बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, और उसकी चोंच जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ऐसे एक स्ट्रॉ की तरह होती है जो उसको मदद करती है कि जो वुड है उसके अंदर से, मतलब उसको उसमें ड्रिल करके, उसमें छेद करके अपने लिए वो कीड़े मकोड़े ढूंढता है। ओके, और इसी तरह से वो अपने लिए घर भी बनाता है, वो वुड पैकर यानी कि कठफोड़वा। ओके, यहाँ पे जो है वो सेंट पीटर का जो श्राप है वो सच साबित हो जाता है, और महिला जो है वो औरत वो कन्वर्ट हो जाती है एक बर्ड में, एक पक्षी में। ओके, सो शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ अ क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। यहाँ पे स्कारलेट जो वर्ड है उसका मतलब है बहुत ही ज्यादा ब्राइट रेड है स्कारलेट, और वो महिला तब जब वो काम कर रही होती है तो उसके सर पे वो रेड कलर का हेट होता है, वो वैसे का वैसा रहता है, पर उसके बाकी जो कपड़े होते हैं वो, क्योंकि वो उस चिमनी से निकल गई होती है, उसके वो कपड़े जल जाते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं। ओके, तो ये कहने का मतलब है, जैसे कि आप वुड कट फोड़वे को आप देखोगे तो उसका पूरा बाकी का शरीर ब्लैक होता है, उसका सर बस रेड कलर का होता है। ओके, सो व्हेन द वुमन टर्न इनटू अ बर्ड, एट द टाइम शी वाज वेयरिंग द रेड कलर्ड कैप ऑन हर हेड, एंड दिस कैप वाज देयर ऑन द बर्ड्स हेड्स टू, बट द वुमन्स रिमेनिंग क्लोथ्स हैड बर्न एंड टर्न इनटू अ ब्लैक इन कलर जस्ट लाइक द कोल। यानी कि कोलसे की तरह उसके बाकी जो कपड़े हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, उसका सर बस रेड कलर का रह जाता है। ओके, सो स्टेंजा 16 जो है हमारा नेक्स्ट स्टेंजा, उसमें क्या कहते हैं हमारे पोएट, देखते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। यानी कि पीपल हु लिव इन द कंट्री साइड, इवन द स्मॉल चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल सी दिस काइंड ऑफ बर्ड इन द वुड्स, दैट्स दे सी दैट द That she stays in there all day and keeps on digging the wood with her beak to collect her food. Whenever any child sees this kind of bird, then his elder tell them his story. They say that bird used to be a woman earlier. She was very greedy and so she was cursed by Saint Peter and turned into a bird. They get a teaching that they should not be greedy as that woman. मतलब कि जब भी कोई बच्चे जब अपने स्कूल में जा रहे होते हैं, या फिर कोई और लोग जब भी उस एरिया में आते हैं, तब उनको ऐसा पक्षी दिख जाता है जिसका सर बहुत ज्यादा ब्राइट रेड होता है, उसकी चोंच यानी कि उसका बीक जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंटेड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जब भी उनको ऐसे बर्ड दिखते हैं तब बूढ़े उनके बुजुर्ग उनको क्या कहते हैं कि वो देखो वो बर्ड जो है, वो पक्षी जो है, वो पहले महिला हुआ करता, एक औरत हुआ करता था, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश थी औरत, इसलिए सेंट पीटर के जो श्राप है, उनके कर्स की वजह से वो औरत का एक औरत वो एक पंछी की मतलब पंछी के रूप में बदल गई। तो वो लोग ये भी कहते हैं कि इसी प्रकार से हम किसी भी चीज की, जब हम बहुत ज्यादा आशा रखते हैं, फिर हम बहुत ज्यादा लालसा रखते हैं किसी चीज की, तो हमारा जीवन जो है वो इसी तरह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और कोलसे की तरह हमारा लाइफ भी जो है वो काली मतलब काली चीजों से बहुत ज्यादा मतलब इनफैक्ट बुरी चीजों से भर जाता है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे कुछ सवाल दिए गए हुए हैं इनका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और एक बार से हम समरी भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और तो और मैं आपको 5 या फिर 10 वर्ड्स ऐसे बताऊंगी जो आपको आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने में, आपकी जो इंग्लिश लेवल है वो इंक्रीज करने में आपको ये वर्ड्स मदद करेंगे। और हम एक और एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, हम ऐसे वर्ड सेंटेंसेस में यूज करना भी सीखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।